یالی مدد. بہت برسوں کے بعد آج ہیملٹن کی جماعت کی پھر ملاقات کرتا ہوں. بولا آپ کو سکھی آباد رکھے ہمیشہ, ایمان زیادہ کرے. علم کا شوق تھا میں, ایک شکایت کرتا ہیملٹن جماعت کو ایک شکایت کرتا, بہت گھوما ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ اس جماعت خانے میں شور بہت ہوتا ہے, ٹو مچ نوائز. جماعت خانے کی قدر جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اگر چھوٹی عمر میں بچوں کو ڈسپلن نہیں سکھایا گیا تو ماں باپ قصوروار ہیں. امام سلطان محمد شاہ دار کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مذہب سے بے ایمان ہو جاتا ہے تو اس کا آدھا گناہ مکھی کا مڑیا پہ ہے, آدھا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. مکھی کا مڑیا کیوں آ گئے اس میں؟ اس لیے کہ اگر وعظیں جماعت خانے میں نہیں ہوتی اور لوگوں کا ایمان خراب ہوتا ہے تو مکھی کا مڑیا رسپانسیبل ہے. آپ کے جماعت خانے میں شور بکور بہت ہے, مولا آپ کو توفیق دے, آپ کی اولاد کو سکھ شانتی دے, حقیقتی سمجھ دے. ہے جی سیوا کیجئے علی نبی جی کی بھائی, جنوں تھی آوے دھیر دین دنی کے دیش میں سکھ پاوے اپنو جیو. بولا ناظر امام پر صلوات و سلام. آج مولانا حضرت امام کے فرمان پڑھیں گے, اور ہاں ایک چیز نکال کے بتاتا ہوں. اس فرمان میں حضرت امام نے ایک چیز کہی جو لوگ سمجھتے نہیں. یہ جو ویک ہے آج ختم ہوا, مکھی صاحب در ورس سے اکڑو تھے تو بہت اچھا. سیوا کیجئے علی نبی کی بھائی, جنوں تھی آوے دھیر. دھیر کہتے ہیں پیشنس. ہم کو صبر ملتا ہے, ہم کو سکھ ملتا ہے. دین دنیا کے دیش میں, دنیا یہ ہوئے یا دین ہوئے, اس کے اندر اس کو سکھ ملتا ہے. تو یہ جو ہمارا رستہ ہے علی نبی کی خدمت کا, وہ بہت عظیم ہے. اس کی درجہ بندگی جتنا ہے. مولانا حضرت امام اس فرمان میں کہتے ہیں کہ تم لوگ جو والنٹیئر سیوا کرتے ہو, تم لوگ جماعت کے لیڈر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہیں جماعت کے وہ والنٹیئر ہیں. اور بات بھی سچ ہے, ان کو تنخواہ نہیں ملتی, وہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں, انرجی دیتے ہیں اور حضرت امام کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے جتنے لیڈرز ہیں ٹاپ سے لے کے نیشنل پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک جتنے بھی لیڈرز ہیں, اس میں والنٹیئر شامل ہیں. یہ سب جماعت کے لیڈر ہیں, یعنی جماعت کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, جماعت کو لیڈ کرتے ہیں. والنٹیئرز کا کام کیا ہے؟ والنٹیئر کا کام یہ ہے کہ وہ جماعت کے اندر کوئی آدمی کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مدد کرتا ہے, اور اگر ان کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو اس کا جواب دیتا ہے. والنٹیئرز لیڈرز ہیں, امام فرماتے ہیں. ٹیچرز ہیں, وہ لیڈرز ہیں کیونکہ وہ ٹیچ کرتے ہیں. इसके अंदर लीडरशिप भी आ गई कि जो जमात के लीडर्स हैं वो कोई मास्टर नहीं है, जमात के नौकर हैं, हजर इमाम के नौकर हैं। जमात के नौकर क्यों? क्योंकि हजर इमाम फरमाते हैं जमात है मेरा अंग है, मेरा फिजिकल बॉडी जो है वो जमात है। मौलाना हजर इमाम हम में से किसी को बोले कि मेरे बूट उतार दो तो हम कितने खुशी होंगे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मुझे मिल चुका है। उस खुशी को मैं याद करके आपको कह रहा हूं कि हजर इमाम की कोई छोटी मोटी चीज भी अगर इमाम बुला के कहे मुझे पानी का गिलास पिलाओ तो हम कितने खुश होंगे, भाग के साफ करके लेके आएंगे। तो इमाम की जो जाहिरी खिदमत है वो जमात की खिदमत है, और वो जमात जो है जमात हजर इमाम का बदन है, इसलिए बदन की बड़ी इज्जत करो। हजर इमाम का बदन पाक है, जमात पाक है। हजर इमाम का जो बदन है उसमें नूर रहता है, जमात में नूर रहता है। ये जमात खाना है, इसके अंदर मुखी कांवड़िया साहब बैठे हैं, मौलाना हजर इमाम के वो लोग वकील हैं, मुखी कांवड़िया हजर इमाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। गादी पे बैठे हुए मुखी कांवड़िया का हुक्म है वो शाफिर का हुक्म जैसा है। जमात के अंदर जो कद है उसमें मुखी कांवड़िया सुप्रीम है, काउंसिल का प्रेसिडेंट, तरीका का प्रेसिडेंट कोई भी है, मिशनरी है कोई भी है, वो जमात के अंदर मुखी कांवड़िया से नीचे हैं। मुखी कांवड़िया की बड़ी इज्जत करो क्योंकि वो हजर इमाम की गादी पे बैठे हैं। वो कहते हैं खाना वदान, तो ये खाना वदान इमाम का खाना वदान है। अगर मुखी ने किसी को दुआ दी है तो वो इमाम की तरफ से दुआ दी है। मुखी कांवड़िया को हक है कि वो इमाम के नाम से तुम्हारी दुआएं कबूल करें, तुम्हारी दसवंद कबूल करें, तुम्हारे लागे कबूल करें, तुम्हारी ऑफर कबूल करें। ये मुखी कांवड़िया का दर्जा है। इसीलिए इमाम कहते हैं कि गत मुखी कांवड़िया के बगैर गत नहीं है, यानी मुखी कांवड़िया शाहपीर का नूर है। मुखी इमाम की गादी पे, कांवड़िया पीर की गादी पे बैठे हैं, और ये जमात जो है ये हाजिर इमाम का अंग है। एक फरमान में मौलाना सुल्तान शाह फरमाते हैं कि मुखी मेरा राइट हैंड है, कांवड़िया मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर हम जमात के अंदर आके अपने मन की मुरादें हासिल करना चाहते हैं तो दीनदारों आओ, खुशी से आओ, क्योंकि जमात नूर से भरी हुई है। जिस तरह हजर इमाम के जाहरी बदन के अंदर इमामत का नूर रहता है, इसी तरह से जमात के अंदर भी शाहपीर का नूर रहता है। तो जमात के अंदर जितने भी लीडर्स हैं, छोटे से बड़े वॉलंटियर्स वगैरह सब, इसमें भूल मत जाना। कभी कभी हमारे अंदर ये मिस्टेक होती है कि जमात भाई को हम नीचा समझते हैं। जमात भाई सारे जमात का भाई है, और वो भी लीडर है। मतलब यह है कि हमारे जमात के अंदर जो लीडरशिप है वो जमात के नौकर हैं, और जमात की खिदमत करते हैं। अपना ओहदा पूरा हो जाने के बाद मौला उनको बरकतें देता है, दुआएं देता है। और लीडर्स जो होते हैं, खासतौर पे जैसे ही लेवल के हिसाब से लीडरशिप बढ़ती जाती है, जैसे कि मैंने आपको कहा है मुखी कांवड़िया लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट लीडर है, चेयरमैन लीडर हैं, इन लीडरों के दर्जे ऊंचे नीचे होते हैं। और ये ऊंचे नीचे जो दर्जे होते हैं हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इमाम ने उनको अपॉइंट किया हुआ है। और ये अगर हमने उनकी बेइज्जती की है तो इमाम की अपॉइंटमेंट की हम बेइज्जती करते हैं। हमें जो कुछ कहना है आराम से कहो। और मैंने जो कहा कि लीडर्स जो हैं वो हजर इमाम के जमात के नौकर हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। हमको एक रिपोर्ट की है इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने, एक न्यूज दी है, एक वाकया सुनाया है। मौला न सुल्तान मोहम्मद शाह दाता, मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि सलवात पढ़ो, लेकिन आप जरूर सलवात पढ़ना। मौला फरमाते हैं कि मुर्तजा अली एक दिन एक रास्ते से निकले तो देखा कि मलिक उश्तर मजदूरों के साथ काम कर रहा है। मौला ने घोड़ा खड़ा किया। मलिक उश्तर कमांडर इन चीफ था, मुर्तजाली की आर्मी का कमांडर इन चीफ था। सॉरी, भाग के आया, सलाम किया। ए मलिक, तू मेरे आर्मी का कमांडर इन चीफ है, तो यहां तू मजदूरों के साथ काम करता है? कहते, या मौला, मैं कमांडर इन चीफ हूं लेकिन आर्मी के अंदर, तेरा तो मैं नौकर हूं, गुलाम हूं। तो मैंने देखा कि ये जो रास्ता है, आप रोज इधर से आते जाते हो, रास्ता लोग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इमाम का गुलाम हूं, मैं भी लग जाऊं खेवा के मौला के घर का रास्ता बनाता हूं। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, देखो इसके अंदर नुक्ता क्या है कि वो कमांडर इन चीफ है लेकिन अली का गुलाम है, इमाम का गुलाम है। चाहे जमात के अंदर कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, वो जमात का नौकर है, इमाम का नौकर है, इमाम की खिदमत करता है, जमात की खिदमत करता है। हमारे हिस्ट्री के अंदर ऐसे कितने ही वाकयात गुजर चुके हैं कि जहां हमारे लीडरों ने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। बॉम्बे में एक लखपति शख्स था, मालदार थे, उसका नाम था इस्माइल उक्का। मैं 60 बरस की बात करता हूं, बड़े व्यापारी थे, 60 बरस की इसकी उम्र थी और बॉम्बे काउंसिल का मेंबर था। पतला सा आदमी था, खूबसूरत आदमी था, मालदार था, बड़ा व्यापारी था, काउंसिल का मेंबर था। काउंसिल ने उसकी अपॉइंटमेंट की कि वो वीक में 2 दिन 11 बजे 10 10:30 बजे 11 बजे आवे, काउंसिल में बैठे, और किसी को भी उसे मिलना होवे, कोई प्रॉब्लम होवे, तो वो 1 घंटा वीक में 2 दिन आते थे। लोग खुश थे। एक दिन 6 फुट 2 इंच का मैकेनिक टाइप का आदमी स्ट्रीमर के गोदी पे काम करता था, छोटी सी बीवी थी उसकी, ये दोनों आए, मियां बीवी का झगड़ा था। कमड़िया साहब अलीजा थे, वहां अलीजा साहब के पास सलाम करके जब उनका वारा आया तो बैठे। इसने अपनी शिकायत की, अभी कसूर इसका था। दोनों की बातें सुनी और अलीजा इस्माइल उका थोड़ी थोड़ी नसीहत उसको भी की, इसको भी की। देखो दुनिया है, कभी कभी भूल हो जाती है, ऐसा समझाते समझाते इसका थोड़ा सा कसूर निकाला, ये गुस्से हो गया, खड़ा हुआ और एक तमाचा जो जोर से मारा। इस्माइल उका 60 बरस की उम्र, दुबला पतला आदमी, कुर्सी से लुढ़क गया, 2 गुलाट खाई, चश्मा उतर गया, औरत भी खड़ी हो गई, बाहर के लोग अंदर आ गए, पकड़ा उसको। सुनो, लीडरशिप सुनो, उठ के खड़ा हुआ, हंसने लगा। अरे इस जोर का तमाचा मारा कि उसकी 5 उंगलियां अंदर घुस गई। उठा, इधर उधर देखा, चश्मा पर टूट गया था, हंसने लगा के कुर्सी पर बैठा। बेटा, बहुत जोर से मारा है लेकिन जरूर तेरे हाथ को तकलीफ हुई होगी। हाय, अपनी दर्द भूल गया? कहते तेरे हाथ को जरूर दर्द हुआ होगा। मालूम नहीं इन अल्फाज में क्या जादू था। वो आदमी उठा, इसके पांव पे घिरा, दोनों पांव पकड़ के रोया, बापा मुके माफ कर। तो के माफ है की नहीं, मुके माफ कर, मुके मारो। प्यार करके उसको उठाया, कुर्सी पे बिठाया, वो रोए। इसको मुश्किल हो गई उसको चुप कराने के लिए। चलो दुआ वगैरह दी, ये लोग चले गए। फिर वापस नसीहत की कि देखिए तेरी बीवी है, इसका ध्यान रखो। उसके बाद उसकी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं किया बीवी के साथ। बाद में ये आलीजा से वजीर बन गया। लेकिन देखो उसने तमाचा खाया। आज का कोई लीडर होता तो पता क्या करता, पुलिस को टेलीफोन करता, ले जाओ इसको। मार खा के हंस के कहता है तेरे को तकलीफ हुई होगी। जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने ये चीज सुना, बोला इतने खुश हुए। ऐसे हमारी लीडरशिप है, क्योंकि हम जो लीडर हैं हम जमात के नौकर हैं। हमारे अंदर टॉलरेंस और पेशेंस होनी चाहिए। जमात का मुखी, सारे हिंदुस्तान के दरखाने का मुखी, क्योंकि बॉम्बे का जो जमात खाना है वो सारी दुनिया के, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया का दरखाना है। भले सुल्तान मोहम्मद शाह लंदन रहते थे, लेकिन उसके फरमान में है कि दरखाना है वो बॉम्बे में है। सारी दुनिया के दरखाने का मुखी हसन लाल जी देवराज, बड़ी बॉडी थी, मैंने ऐसा मुखी नहीं देखा है। सॉफ्ट स्पोकन थे, सॉफ्ट स्पोकन थे। एक दिन मैं गया दुआ कराने के लिए, तो मुखी साहब कमरिया से बातें कर रहे थे और हाथ मुझे दिया, लेकिन नजर उधर थी, मैंने हाथ पकड़ रखा तो ऐसा करके देखा। मैंने कहा मुखी साहब मेरी तरफ देखो ना, हंसने लगा। चलो मुझे दुआ दी, मैं बैठ गया। जब जमात का काम काज खत्म हो गया, किसी को बोला मिशनरी साहब को बुलाओ, मेरे से माफी मांग। मैंने नहीं मुखी साहब, आप गाड़ी पे बैठे हैं, ऐसा नहीं, मैंने तो सिर्फ ध्यान खींचा। लेकिन उस दिन के बाद उसने बातें करनी छोड़ दी। कहने का मकसद क्या है कि जो लीडर है ना उसके अंदर अवेयरनेस बहुत होती है। हम इंसान हैं, भूल कर जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है तो हम ठीक हो जाते हैं। अब ये मुखी साहब हसन लाल जी देवराज एक दिन उठ के जमात खाने से तो दफ्तर खाने में गए, बैठे तो एक आदमी आया, मुखी साहब अली मदद, बोला अली मदद मुझे छोकरी जी सगाई करनी है। खुशी थे, जो क्लर्क थे सेक्रेटरी बैठे थे उनको बोला इनका लिखो नाम, लिखा गया, मुबारक मिली। 15-20 दिन के बाद फिर आया, मुखी साहब नहीं थे और दफ्तर खाने में लिखवाया कि मेरी लड़की की शादी है। अच्छा मुबारक, शादी की तारीख न की हुई, तय हुई। तो जो उधर जो क्लर्क थे सेक्रेटरी थे उसने कहा कि हमको लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आई और शादी की तारीख नजदीक आ गई 2-3 दिन के बाद, तो उसको बुला के भी कहा भी लड़की की हमको बर्थडे चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मैं ला के दूंगा। शादी का दिन आ गया, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आई। अभी हिंदुस्तान में उस वक्त एक लॉ पास हुआ था, उसको कहते थे शारदा एक्ट। इसमें यह है कि कोई भी लड़की 14 साल से पहले शादी नहीं करे, कोई भी लड़का 16 साल से पहले शादी ना करे। ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में पास की। अभी हजर इमाम की जमात गवर्नमेंट का, हुकूमत का कानून नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हजर इमाम का नाम है। शादी का दिन और उसको कहा गया, वो माना नहीं। लेकिन हकीकत क्या थी, लड़की 14 बरस की नहीं थी और कोई वजह से वो शादी करना चाहता था और सर्टिफिकेट देवे तो पता लगे, लेकिन यहाँ जब मुखी साहब उधर से आए तो उसके यहाँ बात की गई। मुखी ने कहा कि देखो बेटा, ये गवर्नमेंट का कानून है और जमात ऐसा नहीं कर सकती कि जानबूझ के हमको सर्टिफिकेट चाहिए। वो गुस्से होके उठ के चला गया। शाम को जमात खाना पूरा हो गया, लोग घर चले गए, कमरिया साहब भी चले गए, मुखियानी ने जो कुछ भी नादी वगैरह ली थी वो सामान उठाया, नौकर के साथ नीचे पहुंचे, मुखी की गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, मुखियानी बैठ गई है, अब मुखी साहब बैठ रहे हैं, कोई नहीं, ये बॉम्बे दरखाने की बात करता हूं, ये सारा इलाका इर्द गिर्द सब इस्माइली रहते हैं उधर। मुखी साहब ऐसा गर्दन झुका के गाड़ी के अंदर बैठना ना, तो यहां से वही आदमी जिसकी लड़की का सर्टिफिकेट नहीं मिला उसने मारी छुरी इधर और भाग गया। मुखी साहब गिर पड़े, हो गई, मुखी को कत्ल किया गया, मुखी को छुरी मारी। आदमी इकट्ठे हुए, फौरन मुखी को खून में नहाते नहाते उठा के हॉस्पिटल लेके गए। रातों रात इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को टेलीफोन किया गया, बोला फरमाया मैं दुआ करता हूं मेरा मुखी बच जाएगा। 3 दिन तक बेहोश रहे, आंखें जब खोली 3 दिन के बाद तो उनका बड़ा लड़का मेहदी था जो बाद में दरखाने का मुखी भी बने। मेहदी बोला बापा की आए तबीयत ठीक है। मेहदी 6 माड़ू मारी है, 21 रहे, उन्हें वो सवार वालों माड़ू पांचों इस्माइली। ओह मेहदी, गुलाम अली के चौक, गुलाम अली कौन? गुलाम अली मर्चेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, बैरिस्टर थे, वकील थे, और उनके हाथ के नीचे अकबर मर्चेंट, वो भी वकील थे, सेक्रेटरी थे। गुलाम अली के चौक जेटलो खर्चो थिए भले थिए, इनके कोई तकलीफ न थिए, इनके कोई तकलीफ न। कातिल को अपने बेटे को कहता है कि कातिल को कोई तकलीफ ना होने देना, जितना चाहो खर्चा करो। जब ये सुना तो मुझे मौला मुर्तजा अली याद आ गए। मुर्तजा अली को छुरी मारी गई, तलवार मारी गई, छुरी नहीं तलवार मारी गई। और जब मुर्तजा अली को होश आया तो अपने बेटे हसन को कहते हैं, पीर हसन को, हसन कातिल कौन है? कि सब कातिल पकड़ा हुआ है, उसको बुलाओ सुबह से, क्योंकि यह वाकया बना था सुबह नमाज के बाद, यहां अब शाम हो गई थी, सुबह से उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम को बुलाया गया। मौला मुर्तजा अली उसको देख के कहते हैं, तू मेरे घर पे मेहमान है, क्योंकि घर लेके आए थे। हसन इसके हाथ खोल दो। हाथ खोल दिया, फरमाया इसको दूध पिलाओ, हमारे घर का मेहमान है। अपने कातिल को दूध पिलाने का हुक्म किया। मुखी कहता है बेटे को कि कुछ भी करो खर्च करो, गुलाम अली को बोलो कि इसको आंच ना आवे, तकलीफ ना होए। मुखी अच्छे हो गए। कुछ महीने के बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब भी बॉम्बे आए तो अपने मुखी पे फखर करते थे, जगह जगह कहते थे, देखो हमारे मुखी को, अमा उसको छुरी मारी लेकिन फिर भी उसने उसको माफ कर दिया। ये हमारी लीडरशिप है। हमारी जमात के जो लीडर्स हैं वो जमात के नौकर हैं, मास्टर नहीं। कितनी चीजें सुनाऊं आपको। 12 बरस का एक लड़का, मौलाना हसन अली शाह के हुक्म से 1870 में अफ्रीका आया, कच्छ से बॉम्बे आया, और यहां पता लगा कि कुछ लोग अफ्रीका जाते हैं। अल हसन अली शाह माँ बाप ने कच्छियों काठियावाड़ियों को गुरबत देख के फरमाया था अफ्रीका जाओ। तो 40 आदमी उधर से निकले, इसमें सबसे छोटा एक 12 बरस का लड़का था, इसका नाम था रहमतुल्ला। ये भी जंजीबार आ गया, इधर आके पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ी मजदूरी वगैरह की, आगे बढ़ने लगा। 18-20 बरस की उम्र के अंदर अच्छा बड़ा व्यापारी बन गया, और व्यापारी बन गया, ऐसा व्यापारी बना कि एक दिन सुल्तान ने इसको बुला के, इस छोटी उम्र में, शायद मेरा ख्याल है 25-26 बरस की उम्र होगी, सुल्तान जंजीबार ने इसको अपना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाया और सारा कस्टम इसके हाथ में दे दिया। मुखी रहमतुल्लाह हेमानी बाद में मुखी हुआ, वारस बना, वारस रहमतुल्लाह हेमानी। ऐसा अच्छा काम किया कि जो सुल्तान था ना, उसकी इसकी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन सुल्तान घर ले गया और बेगम से उसकी मुलाकात कराई, तो बेगम कहने लगी, आज से तू मेरा भाई है, सुल्तान की घरवाली का भाई बन गया। बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था उस वक्त, ये टॉप के ऊपर था अपनी जमात के अंदर। बाकी के जितने लीडर्स थे अफ्रीका के अंदर, उन सब में ये टॉप था, और इमाम भी इसको बहुत प्यार करते थे। हसन अली शाह माँ बाप की खिदमत की, अली शाह माँ बाप की खिदमत की, सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की खिदमत की। एक लड़का कच्छ से आया, 18 साल का, दौ में बैठ के चला आया, गरीब बहुत था, इधर उधर की थोड़ी नौकरियां वगैरह करता रहा। एक दिन उसने चोरी की, इस्लामिक लॉ लगता था जंजीबार में, और रेड हैंडेड पकड़ा गया। काजी ने हुक्म किया, इसका हाथ काट डालो। 18 साल का जवान लड़का, अब जो इसका हाथ काट डाले तो जिंदगी कैसे गुजरेगा। जमात में एक गम की लहर दौड़ गई। अब उसका कोई वाली वारस, सगा कुटुंबा कोई नहीं था, अकेला आया था कच्छ से, हाथ काटने का हुक्म किया गया, और जो काजी ने हुक्म दिया उसको अटेस्ट करने के लिए सुल्तान के पास जाना चाहिए कि सुल्तान साइन करे कि बराबर है। अब यह सुल्तान का हुक्म था कि उसका हाथ काट डालो। तारीख नकी की गई, जमाल के कुछ आदमी रेमू मुखी के पास आए, वारस रहमतुल्लाह मानी कि तू इन्फ्लुएंशियल वाला है, बेगम जो है तेरी बहन है, तू कुछ बीच में आके इसको बचाओ। इस्माइली जमात ने कैसे कैसे हीरे पैदा किए हैं, हीरे। ये तैयार होके बेगम के पास गया, सुल्तान के पास नहीं गया। बेगम को कहते, तू मेरी बहन है, हाँ, तेरा काम पड़ा है, क्या है? इसने हकीकत सुनाई तो बेगम कहती है, ये तो कानून है, सुल्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, चोर के हाथ काट डालो। ये कहते, मेरी बात सुन, हाथ काटना है ना, मैं वॉलंटियर करता हूं, मेरा हाथ काट डालो, उसको छोड़ दो। कहती, क्या बोलते हो? कहते, हाँ, गरीब बच्चा है, माँ बाप है नहीं, यहां कोई नहीं, जवान है 18 साल का, किस तरह जिंदगी गुजारेगा? मेरे पास तो खुदा ने बहुत दिया, बैठ के खाऊंगा, मेरा हाथ काट डालो। उसको बहुत जोर लगाया तो वो उठ के गई खाविंद के पास। वो कहते, क्या बकती है तू, ये कैसा हो सकता है यार, रहमतुल्लाह का हाथ काटूं मैं? बोलती, क्या ये शरीयत की बात है, एक नहीं तो दूसरा, वो तैयार है इस बात के लिए, और शरीयत में ये इजाजत है। ऐसे वाकयात रसूलुल्लाह के जमाने के बाद बन चुके हैं कि कातिल की जगह अपने आप को पेश कर दिया है। आखिर इस बात को छोड़ दिया गया और सुल्तान मान गया, चलो तेरा हाथ काट डालेंगे, उसको छोड़ देंगे। जिस दिन हाथ काटना था दरबार भरा गया, लोग आ गए, लड़का लाया गया, सुल्तान ने कहा इसको छोड़ दो, लड़के को छोड़ दिया, रहमतुल्ला को पकड़ो। लोगों का सांस रुक गया, रहमतुल्ला को पकड़ के लेके आए, जहां हाथ काटना था वहां उसका हाथ रखा गया। सुल्तान ने थोड़ा सा लेक्चर दिया, फरमाया कि हाथ काटने से खून निकलता है, ये आदमी बड़ी उम्र का है, इसने ये कुर्बानी दी है कि उसको छुड़ाने के लिए अपना हाथ कटवा देवे। वो जो जल्लाद था काटने वाला, उसको कहा कि इसकी कलाई पे छुरी लगाओ, खून निकालो, और आधे कप जितना खून निकल जाए बंद कर दो, इसको छोड़ दो, मैं माफ करता हूं। रहमतुल्ला हेमानी का खून निकाला गया और उसको बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी जान बचा ली, उसका हाथ बचा लिया। है ऐसा कोई लीडर आज? जमात के लिए जान दे सके, जमात के लिए दुख उठा सके? मैं अपने इन वडीलों को गुस्सा दिला रहा हूं, आज की मेरी आवाज बहुत से लीडरों को बुरी लगेगी, लेकिन कोई दुनिया में होना चाहिए कहने वाला, अबू अली के सिवा शायद कोई ना मिले, होना चाहिए। हमारी लीडरशिप वीक है, मगर लीडर लोग जो काम करते हैं, वक्त देते हैं, एनर्जी देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा उनको दिन और दुनिया में इसका बदला देता है। लेकिन हमारी दिमागी हालत जो है ना, कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर बगरूरी नहीं होनी चाहिए। मैं लीडर हूं तो उसका यह मतलब नहीं कि मैं जमात का मास्टर हूं। ए मोमिनो, वजीर इस्माइल गांगजी की फैमिली में भी एक ऐसा मौका बन चुका है, हबीब वारिस का लड़का। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जन्म खुशहाली की एक महीने से तैयारियां हो रही हैं, जमात के नौजवान डेकोरेशन कर रहे हैं, ऊपर से गाजी पे से 12 वर्ष का लड़का गिर गया और गुजर गया। इमाम की खुशहाली 2-3 दिन के बाद है और यहां लड़का गुजर गया। उसकी लाश को उठा के घर लेके आए, ढक दिया। वारिस अपनी बीवी को कहता है कि देख इमाम की खुशहाली है, एक आंसू मत बहाना, ढांक के रख दिया, किसी को कहना नहीं कि मेरा लड़का गुजर गया है, नहीं तो इमाम की खुशहाली खराब हो जाएगी, सारी जमात उदास हो जाएगी। ए मोमिनो, खुशहाली हो गई, दबदबे से हो गई, हर जगह भाग लिया, हंसती रही, लेकिन जब ये खुशहाली पूरी हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह मेरा लड़का गुजर गया, तो जमात कैसी पत्थर की तरह खामोश हो गई। क्या कुर्बानी है, क्या कुर्बानी है! बेटे की लाश घर में पड़ी है, जवान बच्चा, लेकिन इमाम की खुशहाली खराब नहीं होने दी। ये वो लोग थे, सितारे हैं, कि जिनकी खिदमतों ने, जिनकी कुर्बानियों ने जमात को मजबूत बना रखा है। इमाम के नाम पर जमात के लिए जान भी देनी पड़े तो दी जानी चाहिए। जमात के लिए दुख उठाना इबादत है। जमात के लिए, मजहब के लिए, इमाम के लिए अपमान सहन करना इबादत है। सेवा ये सेवा है कि ना जान की परवाह है ना माल की परवाह है। इमाम जमान के ऐसे कितने ही बड़े बड़े बुजुर्ग हमारी जमात के अंदर हुए कि जिन्होंने अपने मौला के लिए, अपनी जमात के लिए, अपनी खिदमतों के लिए जान माल की कभी परवाह नहीं की। और जब वो गुजर गए तो इमाम उनको अपने अहले बैत में लेता है। सेवा सिर्फ यही नहीं है कि जमात खाने के अंदर क्लीन कर दिया या बर्तन धो दिए, सेवा तो हजारों किस्म से सेवा है। अपने माल में से अगर किसी गरीब इस्माइली बच्चे की हम मदद करते हैं तो ये इमाम की मेहमानी का दर्जा है, ये सेवा में आता है। हकीकतन जो सेवा है वो इमाम की इबादत, हम जो इबादत करते हैं उसका दर्जा सेवा का दर्जा एक जैसा है। और सेवा हर इंसान के ऊपर, हर इस्माइली बच्चे के ऊपर फर्ज है एक या दूसरे तरीके से। कोई बुजुर्ग है अपनी जमात में, चलने में तकलीफ होती है, हाथ पकड़ के उसको ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ, ये भी सेवा है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि वो घर से अपनी तकलीफें उठा के, अपनी घर से खाना पीना ला के उन गरीब इस्माइली बच्चों को, केवल डीलों को देते हैं, वो सेवा में आता है। गुसल कमेटी के अंदर जो हैं उनकी सेवा अजीम है, कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं उनकी सेवा अजीम है, हजर इमाम के घर को साफ करने वाली बाइयां क्या हैं उनकी खिदमत अजीम है। ये तमाम चीजें इबादत में शामिल होती हैं। इमाम के घर को साफ रखना सिर्फ यही सेवा नहीं, वॉलंटियर की यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो जाना यही नहीं, हर लिहाज से हर तरीके से हम अपनी जमात को सुख देंगे। जमात को सुख देना हमारे इबादत में शामिल है। और इमाम जमान इस बात से खुश होता है कि मेरी जमात के अंदर जो लीडर्स हैं वो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने राजी खुशी से अपनी खिदमतें अता की, दी हुई है मौला को। 2001 में, जनवरी 2001 न्यूयॉर्क में ये जो फाउंडेशंस हैं, जुदी जुदी 18-19 फाउंडेशंस हैं, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी तो बहुत होंगी, इन्होंने हजरत इमाम को इनवाइट किया। आला खान के फाउंडेशन की रिपोर्ट पढ़ के हैरान होते हैं कि आगा खान फाउंडेशन में जितना फंड आता है उसका 75% बांटा जाता है, यानी यूज होता है, और सिर्फ 25-24% एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च होता है। लेकिन जितनी दूसरी भी है ना, फोर्ड फाउंडेशन है, डेल कार्नेगी फाउंडेशन है, इन तमाम फाउंडेशनों की रिपोर्ट ये है कि 70-75% खर्च होता है और सिर्फ हार्डली 20-25% इनका जो फंड है वो गरीबों में और खैरात में जाता है। तो हजरत इमाम को ये सवाल किया गया कि आपकी फाउंडेशन में इतना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च कम है, क्या बात है? साहब हंस पड़े। साहब कहते हैं मेरे पास जो फोर्सन है वो तुम्हारे पास नहीं, मेरे मुरीद जो मेरी इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, मेरी फाउंडेशन में काम करते हैं, वो फ्री काम करते हैं, वॉलंटरी काम करते हैं और कभी कभी खीसे के पैसे भी खर्च करते हैं, इसलिए मेरी फाउंडेशन में खर्चा बहुत कम है। इमाम इस बात के ऊपर फख्र करता है कि हम उसके नौकर हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं, वॉलंटियरी सेवा करते हैं। वॉलंटियर का मतलब क्या है? खुद अपने आप को पेश करना कि मैं तेरी कुछ खिदमत करूं, इसको वॉलंटियर कहते हैं। अपनी खिदमत को ऑफर करने वाला वॉलंटियर है। लेकिन उसके अंदर, वॉलंटियर के अंदर, हजर इमाम के घर की खिदमत करने वाले जो छोटे बड़े सब, उनके अंदर स्वभाव और उनका जो सलूक है, ट्रीटमेंट है, वो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, उनमें पेशेंस होनी चाहिए। मैंने अभी अभी कहा कि जमात के लिए दुख उठाना इबादत है, किसी की गाली गलौच अपमान सहन करना इबादत है। मैंने कल या परसों किधर जिक्र किया है, मौलाना इमाम सुल्तान महमूद शाह दातार की गाड़ी आ रही है बॉम्बे दरखाने ऊपर मेहमानियां और दीदार के लिए इमाम आ रहे हैं। उस वक्त ये हमारा कायदा था कि 2-3 मील दूर एक वॉलंटियर खड़ा रहता था और हर पापा माइल के ऊपर एक वॉलंटियर खड़ा रहे। रेडियो वगैरह का सिस्टम नहीं था, था भी नहीं, तो जो पहला वॉलंटियर जब साहब की गाड़ी देखे तो वो विसल बजावे, तो वो दूसरा आगे वाला वॉलंटियर वो विसल बजावे, इस तरह ये विसल जमात खाने में आ जावे कि अभी 5 मिनट में हाजिर इमाम आ जाएंगे। विसल बजी, लोग भागने लगे। अभी जो बॉम्बे का जमात खाना है इसके सामने रोड है, थोड़ी इस तरफ जाके दूसरा रोड क्रॉस करता है, यहाँ एक रेस्टोरेंट है, लक्की रेस्टोरेंट। एक मोमना औरत, गोद में एक बच्चा है, 2-3 बच्चे हाथ पकड़े हुए हैं। अब ये विसल सुनी तो घबरा गई उस तरफ से इस तरफ क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इधर जो आ जावे तो जमात खाना नजदीक है। अब जो क्रॉस करने दौड़ी, बच्चे पीछे साथ हैं, अभी गाड़ी सामने है, नजदीक आ गई। वहां जो ड्यूटी पे वॉलंटियर था उसने इस औरत को इधर से पकड़ा और घसीट के वापस कर दिया। सुल्तान मोहम्मद शदातार ने अंदर से देखा, ड्राइवर को कहा गाड़ी खड़ी करो, गाड़ी खड़ी की, मौला बाहर निकल आया। वॉलंटियर ने सलाम किया, हजर इमाम कहते हैं यूनिफॉर्म उतार डालो। दबदबा था मौला का, टाई निकाली, कोट निकाला, पतलून निकाली, नीचे पजामा तो था, घबरा रहा है। तुम कैसा वॉलंटियर है, मेरे रूहानी बच्चे को तुम इस तरह से ट्रीट करते हो, इधर से पकड़ के उसको घसीट के हमारी गाड़ी खड़ी करो लेकिन उसको क्रॉस करने दो। बोला तो ऊपर आ गए, वो रो गए। थोड़ी देर के बाद फिर कर्नल पीर मोहम्मद वीर जी मादानी आया सामने, मौला को कहा खुदावन इंसान है तू, रहम है, रहम कर। फिर साहब ने उसको बुलाया और उसको मुआफ कर दिया और फरमान किया कि जमात को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वॉलंटियर दुख उठाना उसकी इबादत है, खिदमत जो है सेवा, सेवा बहुत बड़ी चीज है। सुबह 4 बजे उठ के हम जो बंदगी करते हैं ये भी सेवा है। हमारे पीरों के गिनान के अंदर सेवा को इबादत में लिखा गया है। हम दसवन देते हैं ये सेवा है, हम जमात खाने आते हैं ये सेवा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर सेवा ही को ही इबादत कहा है। अल्लाह कहता है मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी खिदमत करे, मेरी इबादत करे, और इबादत का मतलब है गुलामी करना, सेवा करना, गुलाम बनना। ये जो सेवा है इसमें कुर्बानी की भावना होनी चाहिए, और कुर्बानी की भावना के बगैर सेवा हो नहीं सकती। ऐ मोमिनो, 1300 बरस पहले आपको ले जाता हूं, करबला का मैदान गर्म है, गर्मी का जमाना है, करबला के मैदान है, रहती ही रहती है और सूरज पूरी ताकत से चमक रहा है, भूख प्यास से लोग तरस रहे हैं। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस कैंप में जहां दूसरे लोग 72 जन थे उनका पानी बंद किया हुआ है, बच्चे बिलख रहे हैं पानी के प्यास से, और पानी के ऊपर उसके सिपाही खड़े हैं यजीद के। मुर्तजाली का एक बेटा था जो बीबी फातिमा से नहीं, दूसरी बीवी से था, मौलाना हुसैन मौलाना हसन का भाई था, उनका नाम था अब्बास, बड़े बहादुर थे। हजरत अब्बास उठे, पानी की मश्क लेके, तलवार लेके घोड़े पर बैठे, और रास्ते में जो सिपाही थे यजीद के वो सामने आए, मारा मारी हुई, कत्ले आम हुआ, इधर तलवार, लड़ते भिड़ते नदी तक पहुंचे, मश्क भरी। अब मश्क लेके आ रहे हैं, यहाँ तो जब ये सिपाही मारे गए यजीद के, तो दूसरा जो री इन्फोर्समेंट वाले थे भाग के आए, यहाँ हजारों सिपाही आ गए, हजरत अब्बास अकेले हैं, इधर उधर तलवार चल रही है, अलम उठाया हुआ है। मौलाना अब्बास ने ये जो मश्क थी पानी की, इसको अपने दांतों में उठा लिया और दोनों हाथों से लड़ने लगे। लोगों ने देखा कि ये तलवार से तो नहीं लड़ा जाएगा। दूर जो तीर अंदाज थे उनको कहा गया, अब उन्होंने तीर मारे, मश्क को छेद के सीने में चला गया और मौलाना अब्बास गिर पड़े, पानी भी निकल गया, खून भी निकल गया। अब वो खुश हो गए, इनको घसीट के लेके गए मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जमीन पे बैठ गए, हजरत अब्बास का सिर उठा के अपनी गोद में रखा। भाई अब जो आंख खोली तो सिर इमाम की गोद में पड़ा है, खिसक के सिर हटा, हमारा काम नहीं है ये, जाओ जाओ। अरे सुनो तो सही उसकी बात, उसकी मदद करो, रास्ता ढूंढो। अपना हाथ कटवाने के लिए रख दिया, अपनी गर्दन पे छुरी लगाई और उसको बचाया। मलिक उश्तर सेनापति है, सालार है, और वो इमाम की खिदमत कर रहा है। ऐ मोमिनो, हम इस्माइली मजहब को भी तक समझे नहीं, हम नहीं समझे। कच्छ कच्छ भुज रात के 2 बजे एक बूढ़ा आदमी उठता है, हाथ में लालटेन लेता। वो जमाने में लालटेन ऐसी थी, बत्ती केरोसिन से जलाते थे, और आदमी चले लालटेन लेके, एक हाथ में लकड़ी है, इस्माइलियों के घरों पे लकड़ी लगा के, उठो उठो उठो, मौला जी रहमत थी, उठो उठो, अलाम मेरे, उठो। लोगों को उठा उठा के सुबह इबादत के लिए जमात खाने पहुंचे, तब तलक जमात भाई ने सिगड़ी तैयार कर रखी है, ये आदमी उसके ऊपर पानी का पतीला रखता है, चाय बनाता है, तब तलक लोग आ जाते हैं, एक पैसा लेके चाय का कप देता है। जिंदगी भर उसने ये काम किया, कोई भी आदमी उसके पास जावे, उसकी खिदमत करे, मदद करे, अपमान भी सहन किया। इसका नाम वारस मौलदीना मेघजी, कि जिसकी पोत्री आज शक्कर हाजर इमाम के ऑफिस में काम करती है। वारस मौलू साहब उसको मौलू करके बोलते थे, मौलदीना मेघजी। मेहमानी रखी, मौलू साहब उसको प्यार से बुलाते थे, मौलू। और वो कच्ची में बोले, दुनिया माने हाजिर इमाम उसको हिंदी में बात करे, मौलू तुमने हमारी बहुत खिदमत की है, खुदावन तेरी मेहरबानी है। अब वाकई उसकी जिंदगी सेवा से भरी हुई है, बड़े दुख उठाए हैं, जमात के लिए मेहनत की है, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, जी बुतो जी मेहरबानी है, बहुत वखान किया। रो पड़ा, खुशी से रो पड़ा। देखो बोलू इतनी सेवा की है, वो 1 रुपए में 1 पाई है। ओहो, वो जमाने में जो रुपया चलता था उसमें 192 पाइयां होती थी, 16 आने और हर आने में 12 पाइयां, 192 पाइयों में इतनी सेवा। मौला कहते हैं 1 पाई है, मौला के पांव पे गिर पड़ा तो खुदावन रुपयों कर देती ना, मौलू तुम एक पाई करोगे 191 पाइयां हम बख्शीश देंगे। जो सेवा करते हैं उनमें वीकनेस भी है, कमजोरियां भी आती हैं, कभी कभी भूल भी हो जाती है, तो माँ बाप कहते हैं उसकी कोई फिक्र न करो, तुम एक पाई जितनी सेवा करो 191 पाइयां मैं बख्शीश दूंगा। हमारे सारे मजहब में बख्शीशें बहुत हैं। एक का 1.25 लाख मिलता है ये तो नॉर्मल चीज है, एक जरा सा सिर्फ सजदा भी कर लिया ना तो भी वो कबूल कर लेता है। अपने अंदर जो पिता है ना हूं पनी, वो हमारे मजहब के साथ नहीं मिलती। ईगो, अभिमान, हूं पनी, ये हमारे मजहब के विरुद्ध की चीजें हैं, मजहब में नहीं चलती है। अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझना, ये हमारे मजहब के विरुद्ध की चीजें हैं। और खसूसी तौर पे जो इमाम के घर की खिदमत करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल नामुनासिब है। जितने हम हम्बल बन सकें, जितने हम नम्र बन सकें, इतना इमाम खुश होता है। और इमाम जमाने इन चीजों को जानता है, भले वो जाहिर बाने हमारे से दूर है, लेकिन याद रखो उसकी आंखें सारी दुनिया को देखती हैं। सेवा कीजिए अली नबी की भाई, जिनों थी आवे धीर, दिल के अंदर धीरज पैदा होती है, खुशी पैदा होती है। इमाम के घर की सेवा करने से दिल खुश होता है और उसको नूरानी बख्शिशें मिलती हैं, उसकी आफत बलाएं दूर होती हैं, क्योंकि इमाम के घर की खिदमत जो है ना वो हमारी सुबह की इबादत की खामी को पूरा करती है। अगर इमाम की खिदमतों में, इमाम की इबादत में हमें कोई चीज की कमजोरी आ जाती तो हमारी सेवा उस चीज को पूरा करती है। और वो लोग के जो इमाम के घर की खिदमत करते हैं, मैं एक चीज का खुलासा करना चाहता हूं, ऐसा नहीं समझना कि यूनिफॉर्म पहन के हम सेवा करते हैं और सुबह की इबादत या और कोई हमारे मजहब का फर्ज है उसको कोई छोड़ देते हैं या परवाह नहीं करते। नैरोबी में मौला बैठा है, हजर इमाम शाह करीम बैठे हैं, मेहमानियों का सब काम हो गया, वॉलंटियर्स की मेहमानी थी, मुखी थे रहमतुल्ला सुलेमान वीर जी, रेमू मुखी कहते हैं खुदाबंद, ये वॉलंटियर लोग बहुत खिदमत करते हैं। सब बोले मुझे पता है। वॉलंटियर का कैप्टन कहता है मौला एक प्रॉब्लम है। क्या है? खुदावन हम इनको सबको सुबह उठाने जाते हैं, सब बहुत खुश हुए, तुम इबादत के लिए इनको उठाने जाते हो, बहुत खुश हुआ मौला। क्या प्रॉब्लम है? कहता है खुदावन हम इनको उठाने जाते हैं तो सुबह इबादत के वो अंदर नहीं बैठ सकते। उसके मन में यह था कि कहेगा तुम्हें इबादत मुआफ है, लेकिन मौला ने क्या कहा, ऐसा तुम दो ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप 4 बजे से 4:30 बजे उठाने जाए और वो दूसरा ग्रुप इबादत करे, फिर 4:30 बजे जो उठाने जाने वाला ग्रुप है वो बैठ के इबादत करे और ये इबादत वाला ग्रुप उठ के लेके आओ, लेकिन इबादत करो, इबादत मुआफ नहीं है। जो मजहब के अंदर फर्ज है, दसवंद है, दुआ है, गठपाठ है, नियाज है, हाजिर में हम के घर की हाजिरी है, हमारे मजहब के जो फर्ज हैं उन फर्जों में हमें पूरा होना चाहिए। इंसान है, कुछ भूल चुक हो जावे तो फिर हमारी जो सेवा है ना वो भूल चुक को पूरा कर देती है। लेकिन इबादत करो, इमाम के घर की सेवा करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की इमदाद के अलावा अपने मन के अंदर एक दूसरे को खुश रखो। मैंने अभी कहा कि जमात के लिए, दीन के लिए दुख उठाना हमारी इबादत है। मेरा पैगाम आज का ये है कि इमाम के घर की खिदमत करो, मौला आपको छोटे से बड़ा बनावे, बड़े से बड़ी खिदमत भी अता करे, लेकिन इमाम के घर की खिदमत होनी चाहिए। और अपने टेम्पर को नीचा रखो और पेशेंस रखो, टॉलरेंस रखो, नेक अमाल के साथ चलो। दीन और दुनिया की मौला आपको नेमतें देवे, बख्शीशें देवे, मदद करे, مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر دین و دنیا کی خوشیاں دیوے، برکتیں دیوے، آفت بلائیں دور کرے، بیماری بلا دور کرے، کٹم قبیلے جماعتوں میں صلح سب محبت اتفاق دیوے، آپ کی مولا دعائیں قبول کرے، آپ کو مولا دین و دنیا میں اپنے چھتر میں رکھے، آپ کی عبادت کو، آپ کی دسوند کو، آپ کی خدمت کو، آپ کے نیک اعمال کو مولا قبول کرے، دین و دنیا میں سکھی اور آباد رہو۔ اے زندہ،